ಗುರುನುಡಿತಂಗೇನ ತಸ್ಮೈ ವಂಶಾಕಲ್ಪತರುವ್ಯಸ್ಯ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ನಾಯ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರವಸ್ತುತಿ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾಸಿಂಧ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತೆ. ಸಪ್ತ ಕಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೆ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ಕೇಶವಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ನಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ. ಯತಕಿಂಕರೇಶು ಬಹುಶಃ ಖಲು ಕಾಕಿವಾನಿ ನಿತ್ಯಂ ಪರಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಸುಖನ್ನಮೋ ಯಸ್ಯಾಕದಾರಸುನಿಧೇ ವಿಶುಭಾನುಜಾಯ ತತಕೇಲಿ ಪುಣ್ಯಭವನಂಗನಮರ್ಜನೀಶ್ಯಾಮ್. ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕಮಲಾಟಪಟಲೇ ವಸ್ತಕ್ಷಲೆ ಕೌಸುಭಂ ನಾಶಗ್ರೇ ಪರಮೌಕ್ಷಿಕಂ ಕರತಲೆ ವೇಣುಕರೇ ಕಂಕಣಂ ಸರ್ವಾಂಗೇ ಹರಿಚಂದನಂ ಸುಲಲಿತಂ ಕಂಠೇ ಚ ಮುಕ್ತಾವಲಿ ಗೋಪೀ ಶ್ರೀ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತೋ ವಿಜಯತೇ ಗೋಪಾಲ ಚೂಡಾಮಣಿ. ಗೋಪಿಯೋ ಸೇ ಬಡ ಕರ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮೇ ಕೋಯಿ ನೀ ಹೈ ಜಬ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ನಾ ಸಿರ್ ನವಾ ದೇತೆ ಹೈ ಬಿನಾ ಗೋಪಿಯೋ ಕೀ ಕೃಪಾ ಸೇ ಹೋಗಾ ಕುಛ. ಮಹಾಪ್ರಭು ಜೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಕುಛ ಕಮಿ ಹುಯಿ ಪೂರಾ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕೆ ತೊ ರಾಧಾ ಜೀ ಸೇ ಉಧಾರ ಮಂಗನಿ ಮಾಂಗನಾ ಪಡಾ. ಮಂಗನಿ ಸಮಜ್ತಿ ಹೈ ಉಧಾರ ಮಾಂಗನಾ ಪಡಾ ಕ್ಯಾ ಮಾಂಗನಾ ಪಡಾ ಬತಲಾವ ತೋ. उनके बिना कृष्ण का काम नहीं चल सकता. झक मार करके उनके यहां जाना पड़ेगा. बिना काम नहीं चल सकता. इसलिए हमारी आराध्या कौन है? राधा जी. कृष्ण तुम्हारे क्या लगते हैं? हमारे राधा जी के प्राणनाथ लगते हैं और अधिक नहीं. हमसे उनका डायरेक्ट संबंध. हमारा संबंध किससे है? राधा जी. वो हमारी प्राणेश्वरी आराध्या देवी सर्वस्व. क्यों? कृष्ण भी झक मार करके उनके चरणों में आश्रय लेते हैं. राधा कुंड के तट पर तपस्या आराधना करते हैं, नाम करते हैं, ओम राधाई नमः राधाई नमः राधाई नमः. जिस गोपियां यहां पर पानी भरने जाती हैं, कृष्ण क्या करते हैं? गौओं को वहीं पर चराने के लिए लाएंगे. इसलिए स्त्रियों को कम नहीं सुनना चाहिए. शक्ति नहीं रहेगी तो शक्तिमान क्या कर लेगा? कर सकता है? आपने बोलने की चलने की शक्ति ही नहीं है, क्या कर लेंगे? देखने की शक्ति नहीं है. असल में तो शक्ति ही सब कुछ कराती है ना. शक्तिमान तो ठूठा पेड़ है यदि शक्ति नहीं है तो. शक्ति के वजह से कृष्ण रसिक शेखर है. और शक्ति ही नहीं रहती तो क्या करते थे? निर्विशेष ब्रह्म बन जाते. और शंकराचार्य उनके फॉलोअर वाले सब भी कहते, क्या कहते, हमारे ब्रह्म निर्विशेष है, उनका आकार नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, कृपा नहीं है, दया नहीं है, रस नहीं है. बेकार. जैसे आकाश निराकार है वैसे निराकार है. आ रहा है समझ में? थोड़ा सा कह दीजिए बेचारे. आधा में महिलाएं बैठती हैं और आधा में पुरुष लोग, बल्कि कभी कभी वो पूरा ले लेती है. बहुत स्नेह रखते. गुरु कैसा चाहिए? तरह तरह के सब स्तर दिखलाए। आज हम उसके विषय में और स्पष्ट रूप से बतलाए। राय रामानंद और महाप्रभु जी का मिलन हुआ, जाने ही समझ में आया था, पर आप लोग पूछ लेंगे, तुम लोग भी पूछ लेंगे, यहां समझ में नहीं आया। ये हम इष्ट गोष्ठी कर रहे हैं, हम क्लास आचार्य जैसा नहीं ले रहे, हम आचार्य के रूप में नहीं आए, इष्ट गोष्ठी आप लोगों के बीच का एक हूं, किसी का भैया हूं, किसी का बाप हूं, किसी का बेटा हूं, इस रूप में मित्र के रूप में, इसलिए मित्रों से पूछने में कोई भी हर्ज नहीं। महाप्रभु जी और रामानंद शाम को मिले। महाप्रभु जी ने अपने को छिपाने की चेष्टा की, किंतु राय रामानंद जो परम भक्त हैं उनसे छिप नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हमको सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने भेजा, या परम रसिक और विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए आपके पास में आया, आप जरूर आइए, बार में मत बैठिए, रसिक विद्वान आदमी है, इसलिए हमको सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने आपके पास में भेजा। उन्होंने कहा कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी में उनसे बड़ी कृपा रखते हैं राय रामानंद जी ने, इसलिए हमको कृतार्थ करने के लिए भेजा। दोनों दिन ही बन ये वैष्णवता है, जितना ही आदमी दिन होगा उतना ही ऊपर उठेगा, जो दिन नहीं है वो ऊपर नहीं। भक्ति माने पानी बरसता है पहाड़ों के ऊपर में, पानी नहीं जमता, नीचे जमेगा, जहां पर की गड्ढा है, जहां पर दीनता है वहां पर भक्ति जमेगी, अन्यथा नहीं। महाप्रभु जी ने पूछा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जब भी शिष्य गुरु के पास में जाए तो कुछ पूछे, तो वो गुरु समझेगी ये क्या चाहता है, और नहीं तो नहीं देगा। सब विद्धि प्रणिपाते में परिप्रश्न हले, सेवा करो, हले तो दंडवत प्रणाम करो, फिर सेवा करो, और फिर परिप्रश्न श्रद्धा के साथ में पूछो, कुछ जानने के लिए, परीक्षा करने के लिए मत, और उनको परास्त करने के लिए मत पूछो। अर्जुन ने जैसे विनम्र होकर के पूछा है ऐसे, प्रभु कहे पढ़ो श्लोक साध्य रण निर्णय। शिष्य कुछ जानता तो है नहीं, किंतु आप तो 10-20 वर्षों में कुछ न कुछ समझते हैं, किंतु नहीं समझते, जो समझना चाहिए वो नहीं समझते। हमें किस चीज की जरूरत है, इसलिए पहले कह रहे हैं कि किस चीज के, पहले साध्य का निर्णय कीजिए। ये नहीं कहा जैसे ये भक्ति कहो कि क्या कहो, नहीं कहो, साध्य क्या, साध्य मैंने क्या, तो क्या चीज चाहते हैं, ये साध्य है। इसके बाद में तब वो कैसे मिलेगा वो चीज, उसको साधन करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारा ये निर्णय होना चाहिए, मैं क्या चाहता हूं, हमारे लिए साध्य क्या है, जीवों के लिए साध्य यहां पर पूछ रहे हैं। जगत में जीव जितने प्रकार के हैं उनके लिए साध्य क्या चीज है, हम लोगों को किसी काम में मत किसी को लगाइए। अभी लोग सुनिए, एक घंटा आध घंटा सुनेंगे, किंतु इसको ठोस रूप में सुनिए, आपके जीवन में बहुत काम करें। बेटी कहीं मत जाओ, कुछ हो कहीं हो कुछ भी मत जाओ, बल्कि और निकट चले आओ, अच्छी तरह से सुनो, फिर जीवन में सुनेगी कि नहीं सुनेगी मैं नहीं जानता।
महाप्रभु ने सबसे पहला प्रश्न किया कि हमारा जीवों के लिए साध्य क्या है, अपने लिए नहीं, जीवों के लिए, समग्र विश्व के जीवों के लिए क्या साध्य है, क्या उनको चाहिए। हम जीव मात्र सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, कैसे हमें सुख, और वो भी ऐसा सुख जिसमें कि दुख की छाया न रहे, दुख भी न रहे, ऐसा सुख चाहते। किंतु हम जितना ही सुख के लिए प्रयास करते हैं इस जगत में, देखते हैं कि वो दुखी होता है। बुढ़ापा आएगी, मरना भी है, रोग दुख आएंगे, संघर्ष, जीवन संघर्षमय है। विशेष करके यदि पति किसी स्त्री को छोड़ देता है, स्त्री किसी पति को छोड़ देती है, या आपका सब कुछ बना भाई दूसरे ने दखल कर दिया, तरह तरह की समस्याएं। इसलिए जगत में सुखी होने के लिए तरह तरह के लोगों ने चेष्टाएं की। विशेष करके आज का भौतिक विज्ञान इतनी उन्नति की कि रसोई घर से लेकर के कम्युनिकेशन से लेकर और वार्तालाप, यहां संवाद भेजना लेना मिनटों में, कहां अमेरिका और इंडिया और कहां उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव संवाद ले सकता है, बातचीत कर सकता है छवि के साथ में, उनका देखते हुए ये कैसे बोल रहे हैं उनको सुनेगा। और कुछ ही देर में विश्व के इस छोर से उस छोर में पहुंच जाएगा। हम यहां बातचीत कर रहे हैं और यह बात हो सकता है कि कहीं पर पहुंच रहा हो, जैसे लोग भी बैठ सकते हैं जो कि यहां से सारे स्कोन को वो सब समय लगे हुए हैं, जहां जाता हूं वहीं पर लगाए रखते हैं कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, कहीं महाराज कुछ बोल तो नहीं रहे हैं विरोध में न क्या कर रहे हैं, कहीं आग लगा तो नहीं रहे, सब समय उनकी बड़ी चिंता। तो ये बात यहां पर हम लोग बैठे हैं, किंतु दिल्ली में, मायापुर में और अमेरिका के प्रत्येक स्थानों में सर्वत्र हमारे मिनट मिनट की खबर पहुंच रही। तो सुख के लिए चेष्टा करते हैं। विज्ञान ने इतनी उन्नति की, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन विशेष करके मेडिकल साइंस में, आपका यहां पर कुछ बंद हो गया, सड़ गया, नया लगा दो भाई, कोई बात नहीं, खोपड़ी सड़ गई, बंदर का यहां लगा लो ना, कितना उसने उन्नति। रसोई घर में बैठे हो, स्विच दबा दिया, डाइनिंग रूम आ गया, टट्टी आ गई, बैठने का घर आ गया, सारी व्यवस्था है। यहां पर बैठे हैं, आपको किसी चीज की जरूरत है, कंप्यूटर है, लगा लो, सभी चीजें धीरे धीरे जो चाहते हो वो उसमें से आते आ जाएंगे, जो आपको स्मरण नहीं है, कहां पर क्या चीज लिखा है, यहां वहां यहां, एकदम ढूंढ करके, ये सब उन्नति हुई। किंतु एक बड़ी भारी समस्या पैदा कर दी, आत्मा का जो गुण थे वो मर गए, और शरीर के जो खाद्य हैं उसकी भूख बढ़ गई। माने क्या, हृदय का गुण है प्रेम, नम्रता, विनय, धन्य, आत्मा की खोज, आत्मा को जानना, परमेश्वर के साथ में उसका प्रेम, अफेक्शन, ये सब चीजें खत्म हो गई। और बढ़कर गई एट ड्रिंक एंड बी मेरी, ये सब चीजें बढ़ गई। आप लोगों ने भारतवर्ष क्यों छोड़ा, आप तो भारतवर्ष में थे, यहां पर वृंदावन है, यहां पर नवदीप धाम है, पुरी है, ये सब चीजें तो हाँ, जिसकी आराधना बैठे बैठे आप करने जा रहे हैं, क्यों छोड़ दिया। खाने पीने की कमी नहीं थी, खाने पीने की कमी नहीं थी, कपड़े की कमी नहीं थी, किसी कमी थी एक चीज की जो हम ऊपर से रियलाइज करते हैं। भाई यहां पर भौतिक सुख जो अंग्रेजों को बाहरी लोगों को जो प्राप्त हैं और पैसा कमाया जा सकता है कनाडा में और उससे हम अच्छा घर में रह सकते हैं, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और सब तरह का आराम जो मिलेगा, ये चीजें नहीं मिल सकती हैं भारत भारत में रहकर के। इतनी रूपवती अच्छी सुंदरी कोई विवाह करने के लिए लड़की नहीं मिलेगी जब तक कि धन नहीं रहेगा। धन रहने से ही तो अच्छे उच्च कुल में विवाह होगा, इसलिए पढ़ना लिखना पड़ेगा खूब, एमए पीएचडी डीलिट होना होगा, इंजीनियर डॉक्टर बनना पड़ेगा और तब विदेशों में दोनों हाथों से रुपया बटोर रहे हैं और फिर हो सकता है विदेश में ही बस जाए। किस लिए? सुख के लिए, अपने माता पिता अपने परिजनों को भी छोड़ दिया इस देश में आ गए, सुख के लिए आए, किंतु सुख मिला कि नहीं ये पीछे की बात है, किंतु किया सुख के लिए। हम प्राणों को हथेली में लेकर सब कुछ करते हैं। टाटा बिरला हमारे भारत वर्ष में बड़े धनी हैं सबसे, किंतु वो भी चोरी कर रहे हैं, कर की चोरी कर रहे हैं, कहीं पकड़े जाते हैं तो उनको जेल भी हो जाता है अधिक रुपया कमाने के लिए, उनका पेट नहीं भरा। संसारिक भौतिक सुखों से किसी का पेट आज तक न भरा है न भरेगा। असल में यह सुख सुख ही नहीं है, यह है दुख, दुख सुख नहीं है। हम जिस चीज को वाइन ओमन वेल्थ, इधर आकर के मैंने सीखा, पहले मैं नहीं जानता ये जो तीनों चीजों के लिए लड़ते झगड़ते मरते पीटते और लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये तीनों के लिए ही प्रभु, ये तीनों चीजें कभी भी मनुष्य को सुखी नहीं कर सकती। यदि स्त्रियों के साथ में सुख है या पति के साथ में सुख है तो हम 500 पति बनाएंगे एक साथ में, होगा सुख कि मरेंगे विचार करो। 1000 औरतों के साथ में शादी कर लूंगा एक साथ में, समस्या बढ़ेगी कि क्या होगा? विचार कीजिए, एक स्त्री का ही मन नहीं भर रहे, दो स्त्री को करो देखो जो रोज लड़ाई झगड़ा, कोई आग लगा करके जल गया, कोई जल गई कि क्या हो गया। घी ही सबसे अच्छी चीज है तो 1 किलो घी पी लो, क्या होगा? 1 किलो घी पीने से
दूसरे दिन
मरेगा कि नहीं? टट्टी एकदम लंबी पिचकारी हो जाएगी, डॉक्टर भी नहीं बचा सकेंगे। इसलिए जगत की चीजें ये सुखमय नहीं है, सुख कुछ और है। आदमी मान ले कि 10 अरब खरब डॉलर हमने कमाए तो बैंक में ही तो रखेंगे, खाएंगे क्या? वही रोटी वही साग वो कपड़े पहनेंगे, और क्या कर लेगा तू? अभिमान जी हमको इतना बैंक, और मरेगा तो बस रह गया, नहीं तो लड़कों जो का सौभाग्य है तो ले लिया। इसलिए अभिमान है सुख का, सुख नहीं। इसलिए क्या चीज सुख है इसको समझना चाहिए। इधर के लोग समझते हैं कि वाइन पीने में ही बहुत सुख है, शराब पीने में, अरे वो तो अज्ञानता है, मोरी में गिर जाएगा कहीं गंदे में, कुत्ते तुम्हारा मुख साफ करेंगे, ये तो अज्ञानता है, मरे हुए के समान हो गया, पत्थर के समान हो गया, ये सुख नहीं है। इसलिए कहते हैं जिससे पहले जीवन का सावधान निर्णय होना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम इतने योग्य नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, अरे मूर्ख तू लाख वर्ष तक एक ही क्लास में पढ़ा रहेगा, आखिर कुछ क्वालिफाइड कुछ दिनों में 10-20 वर्ष में तो कुछ होगा सुनने के योग्य कि नहीं होगा? और जब चैतन्य चेतामृत इत्यादि पुस्तकें हैं तुम्हारे गुरु जी ने ही बनाया है, और उसको उठा करके देखेगा कि केवल दुख डिस्ट्रीब्यूट करेगा, केवल दिन भर रात भर करता हुआ 10 लाख रुपए का बुक डिस्ट्रीब्यूट किया और कभी खोल करके नहीं देखा ये, तो तू बिक्री करने से क्या तुमको भक्ति हो जाएगी? अरे अधिक से अधिक सुकृति हो जाएगी, ये बात तो ठीक है, सुकृति होगी, किंतु उनको खोल करके स्वामी जी ने कहीं नहीं लिखा कि केवल डिस्ट्रीब्यूशन करो और इसके पुस्तकों के अंदर से मत देखो। कहां लिखा है? उसके भीतर में प्रवेश करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा तो या वैष्णव से इसमें क्या चीज है। जैसे आज कुछ थोड़ा सा बतला रहा हूं, श्रद्ध जीवों के लिए पहले सुख हमको चाहिए, किंतु कौन सा सुख सुख है इसका निर्णय होना चाहिए। इसलिए यहां पर साधन का निर्णय नहीं लिखा, पढ़ा श्लोक साध्य निर्णय। पहले हम लोगों के जीवन में यह ठीक हम लोग कर लें कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमको क्या चीज चाहिए। सुख चाहिए यह तो ठीक है, किंतु सुख किसको कहते हैं, कौन सा सुख तुमको चाहिए, इसी के बाद पूछा। और राय कहते हैं, राय माने राय रामानंद जी कहते हैं, स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति का। इन्होंने बतलाया, देखो ये जिस संसार में हम लोग जो सब सुख के लिए काम कर रहे हो उससे सुख नहीं होगा। सुख कैसा होगा? यदि तुमको भक्ति हुई तब तो सुख होगा भगवान के चरणों में, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड का वही रचयिता है, वही संसार का पालन पोषण करने वाला है, उसी से हम पैदा हुए हैं, हम उस ब्रह्म के ही पार्ट एंड पार्सल हैं भगवान के। इसलिए जब तक कि हम उसकी सेवा नहीं करेंगे, उनकी भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति माने उनकी सेवा, उनकी सेवा तन मन वचन से नहीं करेंगे, तब तक कभी भी सुख नहीं हो सकता। नेपोलियन बोनापार्ट को आप लोग जानते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट,
हाँ फ्रांस का,
तुम तो जानता है, ये लोग भी शायद जानते हो। वो फ्रांस का रहने वाला, अभी अधिक दिन नहीं, 250 वर्ष के करीब में हो, और वो विश्व का विजय करना चाहता था हिटलर जैसा, और अल्प्स की पहाड़ियों में ही वो भटकता रह गया और मारा गया। ब्रिटिश, अमेरिका, रशिया और ये सब की सेनाएं मिल करके उसको पकड़ लिया है और उसको समुद्र में जीवित डुबा दिया। सुख हुआ? हिटलर की गति क्या हुई आप लोगों को पता है, और रावण और ये सब की तो बातें पीछे, इस जीवन की ही बातें सुनी। सुखी होने के लिए किया किंतु हो गए दुख। इसलिए कह रहे हैं, देखो इस जगत में रहते हुए अपना स्वधर्म आचरण करो और उससे जो भक्ति होगी उसी से जीवन में सुखी रहेगा, यही हमारे लिए साध्य है। विष्णु की भक्ति करना चाहिए। हमारे यहां भारतवर्ष में प्रत्येक गृहस्थों के घर में चाहे कुछ हो या न हो शालग्राम की शिला रहेगी, पहले थी, अब तो धीरे 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 ऐसे जैसे होते चले जाते, शालग्राम की जी शिला रहती थी, न कुछ रहे, राधा कृष्ण का कोई मूर्ति रहे, लड्डू गोपाल की मूर्ति रहे, सीताराम जी का रहे, शंकर जी का रहे, गणेश जी का रहे, कोई न कोई जरूर उपासना उसके घर में हो। बिना कुछ किए हुए शंकर जी पर जल चढ़ाए हुए या पुष्प चढ़ाए या सरस्वती देवी को गौ जो मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, जरूर कुछ करेगा। गीता में भी ऐसा कहा गया, जपन्न देवता जजन्ते सद्भयान्वित ते अपि माम एव कंतेव
अभिधि पूर्वकम्।
देवताएं, देवता जितने लोग हैं कृष्ण से अलग नहीं है, उनकी विभूतियां हैं, उन्हीं की शक्ति से ये सब काम करते हैं, तो उनका भी यदि सम्मान हम करते हैं तो ये कृष्ण का ही सम्मान है, किंतु जरा ऐसे है, डायरेक्ट साक्षात नहीं है। आ रहा है समझ में? यदि उन देवताओं की पूजा करेंगे तो कृष्ण का को नहीं भी पा सकते हैं, और यदि साधु संघ मिल गया तो उनको सब धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते उनके प्रति जो स्नेह शक्ति है वो धीरे 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 कृष्ण में लेकर के पहुंचा दे, और नहीं तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं स्वधर्म आचरण, सच बोलो, झूठ मत बोलो। अतिथि घर में आए तो सत्कार करो, अतिथि देवता भवो, पितृदेवो भव पिता की सेवा करो, मातृदेवो भव माता की सेवा करो, ये सब होना चाहिए ना। यदि कोई शिक्षा दे, देखो माता पिता को मत मानना, बेकार की बात। वो तो पैदा हो गए होना था, क्योंकि वो आनंद ले रहे थे, हम पैदा हो गए बीच में, उनसे क्या जरूरत है, ऐसा मत कहो। माता पिता को भी भगवान का ही एक रूप में स्वरूप मानो। जो माता पिता की भक्ति घर में नहीं सीखेगा, वो भगवान की भक्ति कभी जन्म जन्म जन्मांतर में नहीं कर सकता। माता पिता की जो अपेक्षा करते हैं, जिन्होंने शरीर दिया, कितना कष्ट करके दिन रात परिश्रम करके किया, और उनको नहीं मिले, भगवान को क्या तुम मानेगा। इसलिए कुछ भक्ति रहेगी तब तो भगवान को दिया जा सकेगा, इस चीज को समझो। इसलिए माता पिता का आदर होना चाहिए, गुरु वर्ग का आदर होना चाहिए, तब उस चीज को हम ट्रांसफर कर देंगे कृष्ण में। बस ऐसा चाहिए। विषय के प्रति अभी आछे जे हमार से मत प्रति हो उपचरण। विषयों में हमारी जैसे प्रीति है, माता पिता गुरुजन भाईजन स्त्री पुत्र पिता पति में, उसी प्रीति को भगवान के तरफ में डाल देना, यही भक्ति है। इसलिए यहां कहते हैं ये सब करो घर में रह करके। स्त्री के प्रति जो कर्तव्य है, पिता के प्रति जो कर्तव्य है, माता पिता के, समाज के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है। सच बोलो, झूठ मत बोलो, और उसमें विष्णु की उपासना करो। ये ठीक है। महाप्रभु जी ने कहा इहो बात आगे कहा। अरे ये तो एक्सटर्नल है, आगे के लिए, आगे ये नहीं, ये साध्य नहीं है। साध्य है किन के लिए? संसारिक लोगों के लिए, जो फंसे हुए दुनिया में तारीख है, इससे आगे बढ़िए। महाप्रभु जी ने कहा, अच्छा बोल दीजिए।
It's the beginning of the discussion, Hare Mahaprabhu. And before there's any discussion of sadhana, how bhakti should be done, they're discussing first what is the goal of bhakti.
Goal of bhakti not. How we can achieve happiness and what we want really. So it depends on what we are wanting, what is the mood or goal of the life. Then we will settle what is to do and how to achieve that thing. First wishes. We want a rasagulla, but we'll go in the shop of any paper or in cloth, we cannot have this. Useless to go there. So what we want, it should be decided first. And then how we can attend this thing after that. So from beginning, worldly things he begins. That Vishnu Bhakti may give happiness. हम लोग जो कुछ करते हैं सुख के लिए करते हैं। यदि सुख भी चाहना है तो हमारे कर्तव्यों से सुख नहीं आएगा। सुख आएगा भगवान की भक्ति से ही। रहो संसार में, सब कुछ करो, किंतु प्रोमिनेंट क्या रहेगा? वही विष्णु की भक्ति से ही हमारे कर्म सुधर जाएंगे और हमको सुख मिलेगा। और नहीं तो रावण की तरफ में सब कुछ करते रहने पर भी दुखी होकर के मरेगा। इसलिए भगवान, यदि सुख चाहते हो तो भगवान विष्णु की भक्ति करो, वर्णाश्रम धर्म में रह करके। वर्णाश्रम धर्म का मूल प्राण है विष्णु की भक्ति। विष्णु इसलिए कहा, इसमें नाम नहीं दिया किसी का, जो सारे संसार में व्याप्त होकर के संसार की सृष्टि करता है, स्थिति करता है, प्रलय में सब कुछ उसमें मिल जाता है, उस विष्णु व्यापक जो विष्णु है उसकी सेवा करो। वह है सालग्राम के रूप में रखा है, उसका कोई नाम नहीं। वो लड़क जाएगा, इधर उधर पैर नहीं दिखता है, सिर नहीं देखता है, तो भी भगवान है। उसका चारों तरफ में सिर है, चारों तरफ में हाथ है, चारों तरफ में पैर है, वो जगत को देखता है, सब कुछ करता है, जगत को चलाता है, किंतु स्पेशल नाम नहीं। और दूसरी बात, हम वर्णाश्रम धर्म में रह करके जो विष्णु की सेवा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चे ठीक रहें, उनको रोग न हो, नहीं, हम लोग जीवित रहें, हमको धन की प्राप्ति हो, बिजनेस अच्छी तरह से चले, इसलिए करते हैं, इसलिए इसको बाहरी कहा। आ रहा है समझ में ना? किसे बाहरी कहा? इसलिए हम विष्णु की जो वर्णाश्रम धर्म है, भारतवर्ष में जो वर्णाश्रम धर्म है, विष्णु की पूजा होती है, इसलिए कि हमारे अपने परिश्रम से जो करेंगे वो तो फेल हो सकता है, किंतु विष्णु भक्ति ऐसी है हम सुखी हो जाएंगे, हमारे बच्चे अच्छे क्वालिफाइड होंगे, बिजनेस खूब अच्छी तरह से चलेगा और सुख भी मिल जाएगा, इसलिए विष्णु की उपासना करते हैं। आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है, शरीर से संबंध है, इसलिए कहा जाए ये बाहरी है। आत्मा से संबंध माने क्या? आत्मा के ऊपर ऊपर में असर पड़ेगा। और जो विष्णु भक्ति भी वर्णाश्रम धर्म में करके करते हैं वो शरीर के सुख के लिए करते हैं। हमारा बेटा मर रहा है, जरा ठीक हो जाए प्रभु, आप कृपा कीजिए, हमको कोई तरह की, हमारा निर्धन जो है, हम बहुत पुअर हैं, इतना न रहे, काम चलाने लायक तो प्रभु दे दीजिए, आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए विष्णु की आराधना केवल शरीर और मन के लिए ही होती है, आत्मा के लिए नहीं, इसलिए आत्मा के साथ में कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए कहा ये एक स्थान है। वर्णाश्रम धर्म में जो हम विष्णु की उपासना करते हैं भक्ति का, उसे अधिक से अधिक इस जगत में सुख, स्वर्ग में जाकर के कुछ सुख देवताओं जैसा भोग लेंगे, और अधिक से अधिक कोई जाएगा तो मुक्ति तक थोड़ी सी मिलती है, इसे आगे नहीं बढ़ेगी, उसे आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए महापुरुष जी ने भाई आगे बढ़िए, आगे कहिए, इसे कोई संबंध नहीं, आत्मा का कोई संबंध नहीं। उन्होंने कहा कृष्ण कर्मार्पण सर्वसभ्यसा, ठीक, जो कुछ करते हो तुम इसका मालिक नहीं हो, इसलिए अपने ये सब कर्म तो करो, खाओ दाओ रसोई बनाओ, बच्चों को पालन पोषण करो, जो कुछ जीवन में करते हो उन कर्मों को कृष्णाय नमः, कृष्ण को समर्पण कर दो, और नहीं तो ये फल तुमको संसार में बांध देंगे। यज्ञार्थात कर्मणो लोकोयम अन्यत्र कर्म बंधन तदर्थम और मखम तेय तत्थम, तत् माने विष्णु, विष्णु के लिए ये सब कर्मों को अर्पण कर दो। जत करोषि जदश्नासि जज्जहोषि ततासि तप, यत् तपस्यसि कौन्तेय तप को दोष मदार्पण, अर्पण कर दो, इसलिए तुमको बांधेंगे नहीं ये कर, इसलिए तुम कर्म कर। महाप्रभु जी ने कहा बात तो ठीक कही, किंतु ये भी आत्मा से संबंधित नहीं है, बाहरी चीज है। तुम कर्मों का कर्म का कर्ता कब से बन गया? तुम्हारा कुछ है? तुम कर्म करने वाला है? शरीर किसका है? ये तो मेरा दिया हुआ है। बुद्धि किसने दी? मैंने दी। घर किसका है? मेरा है, मेरा तुम्हारा है, तुम्हारा बाप ने बनाया। मट्टी किसने बनाई? पानी किसने बनाई? सीमेंट किसने बनाया? आकाओ किसने बनाई? तुम बनता कहता जे मैंने, इले जो कुछ करो उनको दो, और तब खूब प्रसाद खूब खाओ, यहाँ तब खूब खाओ और हरि नाम कीर्तन करो, तब तो ठीक है। नहीं तो इसका आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है, तुम जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है, इसलिए तुम करने वाला नहीं है। तुम करने वाला होता है अच्छा, तो तुमको पांच बेटा, एक बेटा और कर लो, तो जिसकी केस सफेद हो गई, दांत टूट गया और अब बच्चे बंद होना हो गया है, और पांच बच्चे कर लो, तो क्यों नहीं कर लेते? तुम कोई भी काम नहीं कर, इसलिए समझो जो प्रभु की कृपा से ये मैं कर रहा हूं उनको सब कुछ समर्पण कर, अन्य तो काम तुमको बांधेंगे। जो कुछ काम करें, पहले कर्म किसको कहते हैं? ये तो बहुत विस्तृत चीजें हैं, सब समझेंगे एक दिन में, तो ये सब नहीं। कर्म माने किसको कहते हैं? पहले ये थोड़ा सा एक मिनट समझा दो। जो कुछ ये हम करते हैं वो सभी कर्म है? नहीं, ये कर्म, मैं जा रहा हूं, आई गो, आई एम गोइंग, इसमें कर्म कहां है? आई जो है वो करता है, सब्जेक्ट है और गोइंग जो है वो क्या है वर्ब है. इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है. मैं आम खा रहा हूं, ये जो आम खा रहा हूं अपने लिए बड़ा अच्छा लग रहा है. कौन किसको टेस्ट लग रहा है, किसका पेट भर रहा है, मेरा. इसलिए यहां पर ये कर्म है. जो कुछ हम अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए जिसको मैं और मैं मान रहा हूं उनके लिए करते हैं, ये कर्म है. अन्यथा मैं भगवान के लिए यदि कुछ बाजार से लेकर के भगवान को अर्पण कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, उनका सेवा स्मरण, ये कर्म नहीं है. ये क्या हो गया, ये भक्ति हो गया. एक ही चीज बाजार से लेकर के खा रहे हैं, ये हो गया कर्म. और बाजार से ले आकर के प्रभु को समर्पण करके तब उनका प्रसाद जो खा रहे हैं, ये हो गया परम भक्ति. एक ही क्रिया. इन चीज को समझना चाहिए. और जब किसी के लिए नहीं करते हैं, ऐसे ही करते हैं, शरीर खा रहा है, आत्मा से कोई संबंध नहीं, तो इसी का नाम हो गया ज्ञान. किसी से मुक्ति मिल जाएगी, किसी भी संसार के किसी कर्म में हम बंधन में नहीं जाते. आ रहा है समझ, थोड़ा थोड़ा. तो महाप्रभु जी ने कहा ये हो बाह्य एक्सटर्नल, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है. तुम और आगे बढ़ो. उन्होंने कहा जी देखो सर्वधर्म त्याग है, थोड़ा सी इधर आ जाओ, सब हमारे सामने ही ट्रांसलेट. भक्ति हैज एवरीथिंग. कोई ऐसी विद्या नहीं है जो भक्ति में नहीं है. महाप्रभु ने कहा भाई ये भी बाहरी है, आत्मा से इसका कोई भी संबंध नहीं है. इसलिए और आगे कहिए. उन्होंने कहा स्वधर्म त्याग. वर्णाश्रम धर्म में जो बातें हैं, जो विष्णु की आराधना है, माता पिता की सेवा है, गुरुजनों की सेवा है, और जो सत्यवादी इत्यादि जो गुण हैं, ये सच बोलो झूठ मत बोलो, ये सबको त्याग करो. दो रूपों में, पहला माता पिता की सेवा भी करो किंतु आसक्ति मत रखो. आ रहा है समझ में, आ रहा है तुम्हारे.
अटैचमेंट
मत रखो. भगवान का सेवक समझ करके उनकी सेवा करो, अपने बेटे की सेवा करो, कोई भी बात नहीं. और ये जितनी संपत्ति है ये प्रभु की है, मैं चौकीदार हूं, इस रूप में समझो. और एक होता है सुखदेव गोस्वामी के समान, नारद के समान, में सबको छोड़ ही दिया. कब, जब उस तत्व पर पहुंच गए, ब्रह्म या कृष्ण को उन्होंने पा लिया, तब फिर कहीं भी ममता आसक्ति नहीं रह जाएगी. वो सब जगत को देखेंगे ये कृष्ण का ही है, तो स्थिति बहुत ऊपर है. इसलिए पहले संसार में को छोड़ते हुए भी उनकी आसक्ति को छोड़ो, नहीं तो तुम यदि सब कुछ छोड़ देगा तो तुम्हारा श्वास भी नहीं ले सकेगा, तो मर जाएगा. कोई कर्म नहीं करेगा, मरेगा. कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा. तुमको रोटी चाहिए तो कहां से लाएगा, लाएगा कहां से, तू बतला. श्वास लेगा कहां से लाएगा, ये जब इस संसार को ही छोड़ दिया. इसलिए पहली स्थिति में संसार के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है, ये मेरी पत्नी है, ये पुत्र है, ये भाई है, ये मेरा संसार है, ये आसक्ति को छोड़ो. ये सब प्रभु का है, हम प्रभु के हैं. मानस देह गेह जो किछु मोर, अर बिनु तुहा पदे नंद किशोर. ये गाते हैं ना स्वामी जी. मानस देह गेह जो किछु मोर, अर बिनु तुहा पदे नंद किशोर. हमारा जो कुछ था प्रभु, हमने आपके चरण में सब कुछ. अब ये मेरे नहीं है, क्या है, ये सब तेरे हैं, ये तुम्हारे सब सेवक हैं.
एक कुत्ता भी आप ही का सेवक है आत्मा की दृष्टि से, इसलिए कुत्ता भी पूजनीय है। स्वर भी क्या है, स्वर में तो वही आत्मा है ना, उसमें भी कृष्ण है कि नहीं, स्वर के अंदर में जरूर है, एक चीटी के अंदर में है कि नहीं, सबके अंदर में प्रभु को देखते हैं, सबको मन ही मन में प्रणाम करते हैं। इस तरह से स्वधर्म का त्याग करो, माने वर्णाश्रम धर्म का त्याग करो, ये बाहरी चीजें हैं। यदि कहो जी स्वधर्म का त्याग तो शरीर भी त्याग हो जाएगा, फिर रहेगा क्या, तो शरीर को भी छोड़ देंगे, नहीं, शरीर में मैं का अभिमान नहीं रहे, ये हाड़ मांस रक्त का एक थैली है प्रभु जी ने हमको दिया है, कुछ दिन इसमें रह करके साधन भजन करो, बस इतना ही शरीर के साथ, जो कुछ सहज रूप में मिल जाए उसको ग्रहण करो, दिन रात खाने के विषय में चिंता में इसे लग रहे हो, इसलिए उन्होंने कहा ये शास्त्र में ऐसे लिखे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज प्रत्याग का लिखा है, सर्वधर्मान क्या, सर्वधर्म देवता देवियों की पूजा जो अभी तक बतलाया था जी वर्णाश्रम धर्म में करो, अब कह रहे हैं कि मत छोड़ो, देवता देवियों की पूजा और जितने देवता और सब लोगों की पूजा है ये सब छोड़ो, एकांतिक माम एकम शरणम, मेरे से ही ये सब देवता है, मेरी विभूतियां है ये सब देवता लोग, भूतों की पूजा वृक्षों की पूजा ये सब छोड़ो, क्या करो हमारे चरणों में शरणागत हो जाओ, शरणागत हो जाएगा तो हम तुम्हारे जितने दुख हैं, दुख के कारण है सबको मैं दूर कर दूंगा। यदि तुमने अपनी स्त्री को छोड़ दिया, महाप्रभु जी ने क्या किया, छोड़ा ना, कृष्ण कृष्ण कहते कहते अपनी स्त्री को भी छोड़ दिया, कल बतलाया था, जो स्त्री अपना सर्वस्व पति के लिए त्याग कर देती है, अपना लोक लज्जा लज्जा तक भी नहीं रखती, समस्त अंगों को भी उनकी सेवा के लिए नियुक्त करती है, अपने माँ बाप को छोड़कर के तुम्हारे घर में बैठी है वो बेचारी तुम्हारे, और तुम उसको छोड़कर के जा रहे हो, ये कौन सा अन्याय है, है न्याय? रामचंद्र जी ने सीता को छोड़ दिया एक धोबी को प्रसन्न करने के लिए, ये कौन सा अन्याय है, और सारे अयोध्या में कोई नहीं कहा जैसे तुमने ये क्या किया, सीता मैया ने क्या दोष किया था, बतलाओ किया था कुछ दोष, क्यों छोड़ दिया, सुखदेव गोस्वामी जी का जन्म होते ही छोड़ दिया, नहीं सुना रियलाइजेशन होने पर जो मैं भगवान का दास हूं, मैं उनका अंश हूं, जब तक उनसे नहीं मिलूंगा तब तक हमको सुख और शांति नहीं हो सकती है, यही हमारा स्वरूप का धर्म है, जब इस चीज को जान लेंगे तब ये जग का धर्म सब समाप्त हो जाता है, यदि वो समझता है कि पाप होगा तो कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें छुटकारा दे दूंगा, तुमको कोई चिंता करने की बात नहीं है, इसलिए महाप्रभु जी छोड़ करके दिखलाया, जब वो ऐसा जब प्रेम हो जाए भगवान के चरणों में तब वो उस जीव को जो स्त्री और पति या भाई या बंधु है उनको चित्त मात्र से ही उनको भी भगवान के चरणों में पहुंचा देंगे, जीव मात्र के ऊपर करुणा कर, इसलिए हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं समस्त धर्मों को, वर्णाश्रम ये तू कर रहा था छोड़ो, जैसे एक उदाहरण दे दो, महाराज हरिश्चंद्र जी परम सत्यवादी थे, झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने विवाह शादी की, उनको एक बेटा हुआ, उसका नाम रहा रखा
रोहितास,
और स्त्री का नाम
सहिबा
तारा,
नहीं नहीं तारा
अच्छा, और उसके साथ में रह रहे थे, बड़ा भारी राज्य था, एक दिन विश्वामित्र जी आए, बड़े भक्त थे वो, तत्वदर्शी वशिष्ठ के समान ब्रह्म ज्ञान भी रखने वाले, रामचंद्र जी उनको अपने गुरु मानते थे, उनकी सेवा चरणों की सेवा करते थे, वह कह जी देखो ये रामचंद्र जी के वंश में आया और सच झूठ को ही सच मान रहा, इसके समझ में अकल नहीं है, ये कहता कि मैं बड़ा भारी धर्मात्मा हूं, जो कहता हूं वो सब करता हूं, उन्होंने कहा जैसा अच्छा
स्वप्न में आया और मांग लिया सब राज्य। दूसरे दिन आए, याद है मैंने सब राज्य ले लिया था।
हाँ हाँ,
तो राज्य दिया नहीं, झूठा। तो अपने को सच्चा मानता है तो ये क्यों नहीं दे देता? ठीक है मैं दे। उन्होंने कहा जैसे वो दक्षिणा लाओ तो 10,000 रुपये सोने के स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। खजांची रुपया बार करो खजाने से। कहा अरे ये झूठे खजांची, तो ये तुमने कैसे कहा? ये तो राज्य मेरा हो गया, खजाना तो मेरा है, तो अब तुम्हारा रुपया कहाँ से आया? राज्य दिया कि नहीं? तो दिया, तो खजाने को छोड़ करके दिया? ऐसा नहीं, तो फिर तेरा रुपया कहाँ? मतलब बात ठीक है कि नहीं? अभी तक वो अपना खजाना समझता था, खजाना भी तेरा है। अब उनको ये समझाना है तू हरिश्चंद्र नहीं है, तेरा वो बेटा रोहितास और तेरी पत्नी ने, ये समझाना बाकी रहा। अच्छा तो जाओ रुपये ले आओ, बेच करके लाओ। अब तुम्हारा तो कुछ है नहीं, अब तुम्हारा शरीर है, तो ठीक है बेचो। बेचने के लिए गए बाजार में, उन्होंने कहा ये मेरा बाजार है, हमारे राज्य में कहीं नहीं बेचेगा, नहीं तो वो तो मेरा रुपया हुआ। हमारे राज्य में भी अपने को नहीं बेचना है। तब उन्होंने कहा कहाँ जाऊं अब, कोई जगह नहीं। मैं अच्छा तो जाओ एक मैं उपाय बतलाता हूँ, शंकर की नगरी जो काशी है वो पृथ्वी पर नहीं है, हमारे राज्य के अंतर्गत नहीं है, तुम वहां जाओ। वहां गए, एक डोम ने 5,000 की बोली उनके लिए बोला, अभी 10,000 बाकी रह गए, 5,000 बाकी रह गया। डोम ने उनको खरीद लिया, अब उनकी पत्नी और बच्चों के लिए बेचना है 2,500 या 2,500 रुपये एक ब्राह्मण ने ले लिया।